मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 11 सितंबर 2019 है और आज के इस afias.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन नौ नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान साथियों के नाम हैं मोनिका सैनी मेरठ उत्तर प्रदेश, कुमारी विनीता पासवान लातेहार झारखंड, गोपी प्रजापति आपका गांव है मुजफ्फरपुर जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, राहुल राणा जहांगीराबाद उत्तर प्रदेश, भूरी सिंह फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अभिषेक बिदवे चिखली महाराष्ट्र, कृष्ण कुमार आपका गांव है गिलहर जिला मधेपुरा बिहार, अरुण तिवारी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश और आदित्य कुमार रुद्रपुर उत्तराखंड से। दोस्तों आज सबसे पहले मैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले अपने प्रिय विद्यार्थियों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूं और सच पूछिए तो इस सूचना को देते हुए मुझे बेहद खुशी का एहसास हो रहा है और साथ ही साथ बहुत अधिक आत्मसंतुष्टि का भी मैं अनुभव कर रहा हूं। स्टूडेंट्स लगातार हम लोगों से इस बात की डिमांड कर रहे थे कि सर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाए और सूचना यह है कि अब एकेडमी ने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के कंप्लीट कोर्स को ऑनलाइन के तहत जारी कर दिया है। आप ऑनलाइन कोर्स के आधार पर आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट के अतिरिक्त प्री मेंस और इंटरव्यू की पूरी तैयारी कराई जाएगी और इसके ऊपर फ्रेंड्स एक पूरा वीडियो अवेलेबल है जिसे आप हम लोग की वेबसाइट class.afias.com पर जाकर देख सकते हैं। वहां फ्री डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। लेक्चर्स को सुनने के बाद आपको बहुत साफ तौर पर यह लगेगा कि इनफैक्ट जितने भी लेक्चर्स हैं उनमें आपको पढ़ाया नहीं गया है बल्कि सिविल सर्विस की जो सबसे बड़ी जरूरत होती है टॉपिक को सब्जेक्ट को समझाया गया है। इसके साथ ही एक और भी इंपॉर्टेंट खबर है कि अभी 30 सितंबर तक के लिए एकेडमी ने जो भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कराएंगे यानी कि एडमिशन लेंगे उनके लिए 2000 रुपए का डिस्काउंट रखा है और इस 2000 के डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको एक डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसका कोड है AFE2000। मैं रिपीट कर रहा हूं AFE2000। इसकी वैलिडिटी 30 सितंबर तक है और इस कोड को अप्लाई करके आप यह डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स अब हम लोग आते हैं आज के मुख्य विषय पर। मित्रों आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं मरुस्थलीकरण यानी कि डेजर्टिफिकेशन पर कुछ बातें करूंगा। इस विषय को मैंने क्यों चुना है आप काफी कुछ समझ गए होंगे, अदरवाइज मैं आपको बाद में बताऊंगा। आइए पहले दूसरी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को देख लेते हैं। न्यूज आपने सुनी ही होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि बिना मेरे याद दिलाए ही आप लगातार कम से कम इसे तो अपने जीवन का एक हिस्सा ही बना लेंगे, कम से कम तब तक के लिए तो जरूर ही जब तक आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। न्यूज चाहे वो रेडियो की हो या दूरदर्शन की हो कुछ बातें आपको समान रूप से सुनने और देखने को मिलती हैं और दो घटनाएं आपने बहुत विस्तार के साथ सुनी होंगी। जो पहला है वह मानवाधिकार परिषद में भारत ने पाकिस्तान के इस आरोप का जबरदस्त रूप से खंडन किया है कि कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। हमारे लिए यह इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, हमारे लिए यहां जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस न्यूज के अंतर्गत एक वाक्य आया था चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जिसे आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को थोड़ा सतर्क होकर के न्यूज सुननी चाहिए और जहां भी इस तरह के रेफरेंस आते हैं अगर आपको मालूम है तो बात बहुत अच्छी है और नहीं मालूम है तो एक बार ऐसे रेफरेंसेस को देख लेना चाहिए ताकि दिमाग में वो बातें ताजा हो जाएं और खासकर तब तो और भी ज्यादा जबकि भारत अब स्पष्ट रूप से यह कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ कश्मीर मामले पर कोई भी बात नहीं होगी, जो भी बात होगी वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी। तब सवाल यह कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का क्या संबंध इस चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से है। देखिए, आपको मालूम है कि चीन पूरी दुनिया में व्यापार करने के लिए, या कह लीजिए कि अपना दबदबा कायम करने के लिए, इस तरह के बहुत से गलियारे बना रहा है, और उसकी कोशिश है कि वो बकायदे एशिया से होता हुआ अफ्रीका और यूरोप तक सड़क के माध्यम से, जलमार्ग से, रेल के माध्यम से वो पहुंचे। उसी का एक छोटा सा हिस्सा है कि चीन पाकिस्तान तक अपनी पहुंच बना रहा है सड़क के माध्यम से। चीन और पाकिस्तान के बीच तो सड़क ही बन सकती है, भूमि का क्षेत्र है, तो उसमें वो अपना बकायदे एक परिवहन नेटवर्क तैयार कर रहा है, ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क तैयार कर रहा है बकायदे। वहां फिर बीच में ऊर्जा परियोजना, एनर्जी प्रोजेक्ट भी लगाएगा और स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाएगा। ठीक है, आप बनाइए, लेकिन भारत की क्या आपत्ति है? भारत की सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि ये जो परिवहन नेटवर्क है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर निकल रहा है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, तो सीधी सी बात है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा तो है नहीं, वो भारत का हिस्सा है जो उसने जबरदस्ती हड़प रखा है, जिसे वो आजाद कश्मीर के नाम से नाम देता है। तो भारत ने ये विरोध किया है, विरोध इस बात का कि चूंकि आप पर उसका अधिकार नहीं है, तो फिर आप कैसे चीन को इस बात की इजाजत दे सकते हैं कि आप यहां से सड़क बना लीजिए। और शुरू से ही भारत इसका विरोध करता रहा है, और इसलिए जब चीन में इस खासकर उसकी इस योजना को लेकर के बैठकें भी हुई हैं, तो भारत ने उस बैठक का बहिष्कार किया है, क्योंकि भारत चीन के इस एक्टिविटीज को अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में ले रहा है, जो बहुत ही एक संवेदनशील मामला माना जाता है। दोस्तों, दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर है, और आपको भारत नेपाल के संबंधों में के बारे में जो भी आप जानते हैं, जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं, उसमें आपको अपडेट करना है, वह है भारत और नेपाल के बीच कल पेट्रोलियम पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ है। पेट्रोलियम पाइपलाइन यानी कि अब जो पेट्रोलियम पदार्थ है भारत से नेपाल को, उस पाइपलाइन के जरिए ही भेजा जाएगा, जो लगभग 60 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है। भारत में इसकी शुरुआत हुई है मोतिहारी नामक जगह पर, और ये वहां नेपाल में जाकर के समाप्त होता है अमलेखगंज। ये नाम आपको याद होने चाहिए, मोतिहारी और अमलेखगंज, और ये दक्षिण एशिया की पहली ऐसी क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन है। देखिए, भारत और नेपाल के संबंध शुरू में तो बहुत घनिष्ठ रहे हैं, लेकिन बीच में थोड़े से ढीले पड़ने लगे थे, और उसका कारण जो था वो चाइना था। धीरे धीरे नेपाल का झुकाव चीन की तरफ होने लगा था। नेपाल में भी मार्क्सवादी पार्टियां हैं, और चीन कम्युनिस्ट है ही, और नेपाल का बॉर्डर चीन से भी मिलता ही है, तो चीन की लगातार कोशिश रही है कि वो नेपाल पर अपनी पकड़ बनाए, लेकिन भारत के नेपाल के साथ इतने जबरदस्त घनिष्ठ और ऐतिहासिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, कि चीन की नहीं चल पा रही थी। लेकिन फिर भी चीन लगातार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, जो भारत के लिए एक चिंता की बात थी। अब इस पाइपलाइन के माध्यम से कहा जा सकता है कि भारत और नेपाल के संबंध एक बार फिर से बेहतर हुए हैं, और आप जानते हैं कि अब भारत ने जो खासकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी की नीति अपनाई है, नेबरहुड फर्स्ट की नीति अपनाई है, उसके तहत भी इस पाइपलाइन का उद्घाटन होना बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो आपके नॉलेज में ये बात ऐड हो जानी चाहिए, और प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण घटना है। मित्रों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और विषय है मरुस्थलीकरण। ये बेसिकली आपका जो जनरल स्टडीज मेंस का थर्ड पेपर है, जिसमें आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखते हैं, या थोड़ा बहुत आप कह लीजिए कि पर्यावरण भी थर्ड पेपर का हिस्सा है, उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मुझे लगता है कि 2020 के मेंस के लिए, और नो डाउट कि प्री के लिए भी, यह महत्वपूर्ण हो चुका है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मरुस्थलीकरण पर अभी जो एक बैठक हुई है, जिसे आप COP14 के नाम से जानते हैं, COP14 का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, COP, उसका 14वां सम्मेलन। कहीं कहीं पर इसके लिए आपको दूसरा नाम भी पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र का UNCCD कॉन्फ्रेंस, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण प्रतिरोधी कन्वेंशन, ये बातें भी आपको पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सीधी सी बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विंग है जो खासकर क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत संवेदनशील है। इसे कहा जाता है, बकायदे यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र ने, वहां जो देश हैं उन्होंने एक प्रस्ताव स्वीकार किया था। देखिए उसका नाम क्या है, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। मैं रिपीट कर रहा हूं, यूएनओ का यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज और इसका शॉर्ट फॉर्म होगा यूएनएफसीसीसी। यूएनएफसीसीसी ये आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए। तो इसी में देखिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP14, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज यानी कि इस सम्मेलन, इस विषय पर, इस फ्रेमवर्क में जितने भी देश शामिल हैं, जिन्होंने भी इसे स्वीकार किया है, जिन्होंने भी इस पर हस्ताक्षर किए हैं, वो इसके पार्टीज हो गए। तो उन देशों का सम्मेलन, तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहा गया COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, ब्रैकेट में है 14। इसका मतलब है कि यह 14वां सम्मेलन है जो भारत में हुआ है। चूंकि यह सम्मेलन भारत में हुआ है और इसका विषय मरुस्थलीकरण था, तो स्वाभाविक तौर पर हम ये मानकर चलना चाहिए कि भारत के लिए अब यह विषय, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए यह विषय एक इंपॉर्टेंट विषय बन गया। और आप देखिए कि कितना महत्वपूर्ण था कि हमारे प्रधानमंत्री जी गए और प्रधानमंत्री जी ने जाकर के उस सम्मेलन को संबोधित किया है। तो इससे भी इस सम्मेलन का जो वजन है उसका पता चलता है। तो सीधी सी बात है कि अब आपको तैयारी कर लेनी चाहिए कि मरुस्थलीकरण क्या होता है, क्यों मरुस्थलीकरण का विस्तार, मरुस्थलों का विस्तार होता चला जा रहा है भारत के संदर्भ में भी और थोड़ा सा एशिया के संदर्भ में भी। देखिए, भारत के संदर्भ में तो आपको जानना ही चाहिए, एशिया के संदर्भ की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, एशिया महाद्वीप का जो ज्यादातर भाग है वो शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में आता है, है ना। यहाँ की जो जलवायु है या तो शुष्क है या अर्ध शुष्क है। तो जहां शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु होगी वहां मरुस्थलों के फैलाव की सबसे ज्यादा आशंकाएं रहती है, संभावनाएं रहती है आपके लिए। वहां मरुस्थल बहुत तेजी से बढ़ते हैं और सबसे ज्यादा मरुस्थल आप ये कह लीजिए कि एशिया में फैल भी रहे हैं। और दुर्भाग्य यह है कि मरुस्थल फैल रहे हैं और दूसरी तरफ एशिया में जनसंख्या वृद्धि की गति सबसे तेज है। तो जब आपकी जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या बढ़ने के कारण आपको ज्यादा से ज्यादा जमीन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन पता लगा कि जो जमीन है वो बंजर होती चली जा रही है, मरुस्थलीय होती चली जा रही है। जहां तक भारत की बात है फ्रेंड्स, भारत का लगभग 30% स्थल भाग या तो मरुस्थल हो चुका है या मरुस्थल बनने के करीब है, 30%, सोच करके देखिए, एक तिहाई। और इसमें जो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, कुछ आंकड़े हैं जो आपको नोट कर लेने चाहिए और दो चार बार आप जब दोहरा लेंगे, दो चार दिन लगातार, तो फिर ये आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। इसमें जो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है मरुस्थलीय क्षेत्र में वह 2003 से 2013 के बीच लगभग 18 लाख हेक्टेयर भूमि मरुस्थल बन गई। और जो विश्व का 23% विश्व का मरुस्थल है, भारत का 30% है। तो आप देखिए कि विश्व के स्तर से भी भारत में मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है वो ज्यादा है। और हमारे यहां जो टोटल मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें से लगभग 80% मरुस्थल 8 राज्यों में है, जिसमें झारखंड में तो बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है। ये 8 राज्य है, राजस्थान तो आप जानते ही हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। देखिए, जब मैं कह रहा हूं मरुस्थलीय क्षेत्रों का विस्तार, तो आप ये मत समझिए कि वो मरुस्थल हो गए हैं, वो बंजर होते चले जा रहे हैं, उनके मरुस्थल हो जाने की आशंका है। कुल मिलाकर ये कि बंजर हो गए हैं और वो खेती के लायक नहीं रह गए हैं। खेती के लायक क्यों नहीं रह गए हैं, इसके अलग अलग कारण है। आप जानते हैं, हवा से कटाव हो रहा है भूमि का, पानी से भूमि का कटाव हो रहा है, जंगल के काटने के कारण भूमि का क्षरण हो रहा है। और आपको एक बात यहां मैं और याद दिलाना चाहूंगा, याद करने की कोशिश कीजिए, कुछ समय पहले के मैंने डेली ऑडियो लेक्चर में आपसे द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ऑफ यूएनओ के बारे में बात की थी। उन्होंने बताया था कि वैश्विक तापमान में जो वृद्धि हो रही है, बिल्कुल न्यू डायमेंशन था, वैश्विक तापमान में जो वृद्धि हो रही है उसका मुख्य कारण भूमि का गलत इस्तेमाल किया जाना है, भूमि का क्षरण हो रहा है। और यहां भी हम मरुस्थल के तहत देख रहे हैं कि भूमि का क्षरण ही होने की बात कही जा रही है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखिए भारत के बारे में जो घोषणा की है, ये आंकड़े आपको बिल्कुल याद हो जाने चाहिए। जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये कि भारत ने अभी तक, मतलब ये कहा था कि 2030 तक हम अपने यहां की 2.1 करोड़ एकड़ बंजर जमीन को उपजाऊ बना लेंगे 2030 तक, 2.1 करोड़ हेक्टेयर भूमि। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी ने उस लक्ष्य को बढ़ा दिया है और उस 2.1 को बढ़ाकर 2.6 कर दिया है, हम इतनी जमीन को खेती के लायक बना लेंगे। साथ ही साथ उन्होंने एक बात और भी कही है जो थोड़ी सी आशा जगाती है कि 2015 से 2017 के बीच भारत में पेड़ और जंगल के क्षेत्रफल में लगभग 8 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि एक अच्छी सूचना है कि हमारे यहाँ जो वन क्षेत्र हैं उनमें लगातार विस्तार हो रहा है और जो बंजर जमीन को बंजर होने से रोकने के लिए या खेती योग्य बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण कदम है वह यह है कि वृक्ष लगाए जाएं। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे लगता है कि इस पर आप सबको एक अच्छी तैयारी करनी चाहिए। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। अब मैं आता हूँ न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूँ और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: आरती यादव मैनपुरी उत्तर प्रदेश से, फैजान खान, सोनल कहालकर सीपेवाड़ा महाराष्ट्र से, अनीता शिंदे, विशेष गिरी वाराणसी से, हिमांशु, समीर कुमार और राहुल सिंह राठौर। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।